Iran Radio Podcast.
قریب 4500 سال پہلے ایران میں سومیرین، اسیرین اور بیبیلونین تیل سنسادھنوں کا اپیوگ کر رہے تھے۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر پوڈ کاسٹ کا یہ 47واں ایپیسوڈ ہے۔ ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ تو ہم بات کر رہے تھے 4500 سال پہلے کی۔ وہ لوگ بٹومن جھیل سے تیل نکالتے تھے اور اس کا استعمال جہازوں کو انسولیٹ کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اس کا الیکھ اتہاس کے پتا کے روپ میں جانے جانے والے یونانی اتہاسکار ہیرودوتس کے کاریوں میں ملتا ہے۔ ایرانی سینکوں کے پاس تیل اور سلفر سے بھرے کنٹینر ہوتے تھے۔ وہ اس پدارتھ کو اپنے دشمنوں کے سر پر اونڈیل دیتے تھے اور پھر اپنے اگنی باڑ چھوڑ دیتے تھے۔ بعد میں عربوں اور رومنوں نے ایرانیوں سے یہ ودھی سیکھی اور ہتھیار بنانے کے لیے تیل کا اپیوگ کیا۔ کچھ اتہاسکاروں کے انوسار ایران میں ساسانی شاسن کال کے دوران جنرل بہرام چوبن اگنیستروں کا پریوگ کرنے والے پہلے سینک تھے۔ 1859 میں کرنل ایڈوین ڈریک امریکہ میں تیل کنواں کھودنے میں سفل رہے، لیکن یہ اتہاس کا پہلا کنواں نہیں تھا۔ اتہاس کا سب سے پرانا تیل کنواں شوش کی پراچین سبھیتا کے ریڈیناس کھیتر میں تھا، جس کا اتہاس ایکمینڈ کال سے جڑا ہے۔ ہیرودیتس اس تیل کنویں کے بارے میں کہتے ہیں، ایرانی لوگ اس کنویں سے کولتار اور نمک نکالتے ہیں۔ وہ ایک بالٹی کو ایک گھماؤ دار چھڑی سے باندھ کر کنویں میں ڈالتے ہیں اور اس میں یہ کچا تیل نکالتے ہیں۔ مارکو پولو کے انوسار وشو کا پہلا تیل کنواں ایران میں تھا۔ صفوی یگ کے دوران 1593 میں باکو میں ایک تیل کنواں کھودا گیا تھا۔ یہ کنواں ڈریک دوارا امریکہ میں کھودے گئے کنویں سے 15 میٹر گہرا تھا۔ اس سمے باکو ایران کا حصہ تھا اور اس شہر سے تیل اتپاد سمندر کے راستے دنیا کے انیہ حصوں میں بھیجے جاتے تھے۔ 26 مئی 1908 کو ایران میں پہلا آدھونک تیل کنواں مسجد سلیمان شہر میں کھودا گیا تھا۔ یہ ایران میں تیل نکالنے کی شروعات نہیں تھی، بلکہ مدھیہ پور میں تیل اپنیویشی کرن کی شروعات تھی۔ 1901 میں ایران اور برٹین کے بیچ ڈی آر سی سمجھوتے پر ہستاکشر ہونے کے بعد دکشنی ایران میں تیل کی کھوج کے لیے ولیم ناکس ڈی آر سی کے پریاسوں کا نتیجہ سامنے آنے میں 7 سال لگ گئے۔ ان 7 ورشوں کے دوران ایران میں کئی گھٹنا کرم گھٹے۔ ان مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک سمویدھانک کرانتی تھی۔ لوگ ایک راشٹریہ صلاح کار سبھا کا گٹھن کرنا چاہتے تھے اور شاہ کی شکتیوں کو سیمت کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس دوران جب برٹش دکشنی ایران میں تیل نکالنے میں ویست تھے اور وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اسے ایران سے کیسے نریات کیا جائے، ایران میں قاجاری شاسن سمویدھانک کرانتی میں الجھا ہوا تھا اور قاجاری شاسک اپنی استھتی اور شکتی کو سرکشت رکھنے میں لگے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آخری قاجاری شاسک احمد شاہ 1909 میں گدی پر بیٹھے۔ ٹھیک اسی ورش اینگلو ایرانی تیل کمپنی کی استھاپنا کی گئی اور ڈارسی انوبندھ کی سبھی رعایتیں اس کمپنی کو ہستانترت کر دی گئیں۔ آگے چل کر اس کمپنی کا نام بی پی یعنی برٹش پیٹرولیم کر دیا گیا۔ انیس میں جب پہلا وشو یدھ سماپت ہوا تب روسی زار راجے کا استتو سماپت ہو چکا تھا۔ روسی سینکوں نے اتری ایران چھوڑ دیا اور اب انگلینڈ کا ایران میں کوئی پرتدوندی نہیں تھا۔ اب بی پی کی نظر اتری ایران کے تیل پر تھی۔ برٹین اب وہ رعایت بھی چاہتا تھا جو روسی ورودھ سے بچنے کے لیے ڈارسی انوبندھ میں شامل نہیں کی گئی تھی، لیکن ایران میں بھی استھتی بدل رہی تھی۔ سمودھان وادیوں کی جیت ہوئی اور اب ایران میں ایک پرامرش داتا سنسد تھی۔ یہ سنسد اتیت کی بھانتی انگلینڈ کو آسانی سے رعایتیں دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بی پی نے انوروھ کیا کہ اتری پرانتوں کو بھی انوبندھ میں شامل کیا جائے، لیکن اسے اسویکار کر دیا گیا۔ ईरानी संसद की शक्ति का मुकाबला करने के लिए इंग्लैंड ने ईरानी राजा को बदलने का फैसला कर लिया। उन्होंने सैन्य अधिकारियों में रजा खान मीर पंज को तख्ता पलट के लिए उपयुक्त उम्मीदवार पाया। रजा खान ने तख्ता पलट कर दिया और कुछ समय बाद राजा बन गया। जिस समय रजा खान ब्रिटेन के साथ एक नए तेल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में व्यस्त था, उसी वक्त जर्मनी में नाजी पार्टी और एडोल्फ हिटलर ने सत्ता संभाली। वो अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन थे क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने उन्हें अन्य यूरोपीय देशों की तरह अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की अनुमति नहीं दी, जिससे उन्हें लगता था कि जर्मनी के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। रजा खान ने जर्मन नेता हिटलर से नज़दीकी बढ़ानी चाही और स्वयं को अंग्रेज़ों से दूर करना शुरू कर दिया। जर्मनों ने ईरान में सड़कों, इमारतों और कारखानों का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे ईरानियों की उनमें रुचि पैदा हुई। कुछ वर्षों के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन और मित्र देशों को ईरानी तेल की ज़्यादा ज़रूरत थी। इस तरह ये ईरान में ब्रिटिश, सोवियत संघ और अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख टन ईंधन का उत्पादन करने लगा। उन्होंने जर्मन विशेषज्ञों और इंजीनियरों की उपस्थिति का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दिया। रजा शाह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके बेटे मोहम्मद रजा को, कि जो अपने पिता से ज़्यादा आज्ञाकारी था, गद्दी पर बैठा दिया गया। वर्षों से सोवियत संघ की नज़र उत्तरी ईरान के तेल पर थी और अब जबकि उन्होंने देश पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया था तो उसे लगा कि उत्तरी तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने का ये सही समय है। रूस की मांग का ईरानी सरकार और 14वीं संसद ने विरोध किया। संसद में डॉक्टर मुसद्दिक ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार ईरानी सरकार को युद्ध के दौरान विदेशियों से किसी भी तरह की रियायत पर बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा विश्व युद्ध सन 1945 में समाप्त हुआ। ईरानी सरकार के साथ हुए समझौते के आधार पर कब्जाधारियों को अपने सैनिकों को देश से बाहर निकालना था। अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक वापस चले गए, लेकिन सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को अजरबैजान से बाहर नहीं निकाला। उसने अजरबैजान में अलगाववादियों का समर्थन किया ताकि ईरान को उत्तरी क्षेत्रों में सोवियत संघ को तेल रियायत देने के लिए मजबूर किया जा सके। इन सभी प्रयासों के बावजूद सोवियत संघ ईरानी संसद से कोई रियायत हासिल करने में नाकाम रहा। इस घटना से ईरानी जनता का विदेशी ताकतों के खिलाफ आत्मविश्वास बढ़ गया। अब सभी को उम्मीद भी थी कि संसद और सरकार दक्षिणी क्षेत्रों के तेल के बारे में सोचेंगे, जो अंग्रेज़ों के अधिकार में था। ईरानी शासन दक्षिणी तेल के संबंध में नए प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने संसद में तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पेश कर दिया। तेल उद्योग राष्ट्रीयकरण कानून पारित होने के 37 दिन बाद डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के प्रधानमंत्री चुने गए। मुसद्दिक ने विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी को ब्रिटिशों से वापस लेने के लिए एक समूह को आबादान रवाना किया। उन्होंने रिफाइनरी के प्रवेश द्वार से एंग्लो ईरानी तेल कंपनी का चिन्ह हटा दिया और उसकी जगह ईरानी तेल कंपनी का चिन्ह लगा दिया। इंग्लैंड में चिंता का माहौल पैदा हो गया। इसके 3 साल पहले भारत से उन्हें निकाला गया था। उसके बाद एंग्लो ईरानी तेल कंपनी को उस देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तेल के राष्ट्रीयकरण के लिए डॉक्टर मुसद्दिक के प्रतिरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने आबादान पर सैन्य हमले की तैयारी कर ली, लेकिन अमेरिकियों ने, जो ईरान पर हमला करना अपने हित में नहीं समझते थे, मुसद्दिक के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। मुसद्दिक एक अजीब स्थिति में अमेरिकी प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। उन्हें उनसे मिलने के लिए उनके घर जाना पड़ा। मुसद्दिक ने पायजामा पहना हुआ था और उन्होंने नीम दराज होकर अपना एक हाथ अपने सिर के नीचे रखा हुआ था। विलियम एवरेल हैरीमैन बेड के पास एक कुर्सी पर बैठ गए और कर्नल वॉल्टर्स को फर्श पर दोजानू होकर बैठना पड़ा। मुसद्दिक ने कभी किसी को नहीं बताया कि इस तरह के बर्ताव का क्या मतलब था, लेकिन अमेरिकी मुसद्दिक के इस व्यवहार से इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने मिशन की तुलना एलिस इन वंडरलैंड की कहानी से कर दी। हैरीमैन मुसद्दिक को भविष्य को लेकर डराने की कोशिश कर रहे थे। वो मुसद्दिक से साफ बोले कि पश्चिम ईरान को अपने तेल के लिए बाजार नहीं खोजने देगा। मुसद्दिक ने तेल से ईरान को हासिल होने वाली कम आय के बारे में शिकायत की। उन्होंने जब बताया कि ईरान को कितनी आय की उम्मीद है तो ये सुनकर अमेरिकी आश्चर्यचकित रह गए। हैरीमैन ने कहा कि आप एक बैरल तेल की बिक्री में जितनी हिस्सेदारी चाहते हैं वो उसकी कीमत से कहीं अधिक है। मुसद्दिक ने जवाब दिया, ये झूठ है। हैरीमैन ने पूछा कि झूठ से आपका क्या मतलब है। मुसद्दिक का मतलब तेल से प्राप्त सामग्री की कीमत से था। उन्होंने हैरीमैन से कहा, लोमड़ी को देखें, उसकी पूंछ उससे भी बड़ी है। हैरीमैन को एहसास हुआ कि तेल मुद्दा एक बहाना था और मुसद्दिक का असली इरादा देश से अंग्रेज़ों को बाहर करना था। ईरान से लौटने के बाद हैरीमैन ने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि एंग्लो ईरानी तेल कंपनी अब अपने अच्छे पुराने दिनों में नहीं लौट सकेगी। ईरानी तेल को एंग्लो ईरानी तेल कंपनी समेत कई कंपनियों के हाथों में जाना चाहिए और निश्चित रूप से मैदान में अमेरिकी कंपनियां भी हैं। अमेरिकी भी ईरान में अपना हिस्सा चाहते थे और इससे अंग्रेज़ काफ़ी खफा थे। चर्चिल ईरान के साथ कठोर व्यवहार करना चाहते थे। उन्होंने कहा, अमेरिकियों को ईरान को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान अपने तेल का राष्ट्रीयकरण करने में सफल हो गया तो मध्य एशिया के अन्य देश भी उसका अनुसरण करेंगे। फिर मिस्र स्वेज नहर का भी राष्ट्रीयकरण करेगा। हालांकि अंग्रेज़ों को डर था कि अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया तो ईरानी जनता कंपनी के बचे हुए कर्मचारियों को भी अपने देश से निकाल देगी। हालांकि अंग्रेज़ों द्वारा कोई कदम उठाने से पहले ही मुसद्दिक ने न केवल कंपनी के बचे हुए कर्मचारियों को ईरान से निकाल दिया, बल्कि कुछ ही समय बाद ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारियों को भी ईरान से बाहर कर दिया। ब्रिटेन ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए। ईरान को माल भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ब्रिटिश बैंकों ने ईरान के साथ सहयोग बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया की सभी प्रमुख तेल कंपनियां एंग्लो ईरानी तेल कंपनी की सहायता के लिए आगे आ गईं। ये दिग्गज देश जो कभी एक दूसरे के साथ बड़ी प्रतिस्पर्धा करते थे और अपने जासूसों के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, ईरान के खिलाफ एकजुट हो गए। स्टैंडर्ड ऑयल, रॉयल डच शेल, गल्फ और कई अन्य छोटी और बड़ी कंपनियां मुसद्दिक ने ब्रिटिश प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए तेल रहित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। इस नीति से ईरान का व्यापार संतुलन कई वर्षों के बाद सकारात्मक हो गया और उसे एक बड़ी जीत हासिल हुई। ब्रिटिश षड्यंत्रों को विफल करने के अलावा मुसद्दिक को मोहम्मद रजा शाह का भी सामना करना पड़ा। मुसद्दिक को विद्वानों, विशेषकर आयतुल्लाह काशानी जो स्वयं संसद के सदस्य थे, का समर्थन प्राप्त था। विद्वानों के समर्थन से लोगों का मुसद्दिक पर भरोसा और समर्थन बढ़ा। मुसद्दिक के पक्ष में जनता और विद्वानों की उपस्थिति ने शाह से अधिक अधिकार लेने और रक्षा मंत्रालय पर नियंत्रण हासिल करने में उनकी मदद की। अब मोहम्मद रजा पहलवी खुद को जनता का समर्थक नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने खुलेआम अपने देश के दुश्मन इंग्लैंड और अमेरिका का पक्ष लेना शुरू कर दिया। ऑपरेशन अजाक्स में शाह का गुप्त नाम स्काउट बॉय था। ऑपरेशन अजाक्स मुसद्दिक को उखाड़ फेंकने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा रची गई एक साजिश थी, जिससे मुसद्दिक के सरकार के तख्ता पलटने की हरकत का पता चलता है। विश्व के तेल संसाधनों में अधिक हिस्सेदारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा केवल एशिया तक ही सीमित नहीं थी। दक्षिण अमेरिका और मैक्सिको में ये प्रतिस्पर्धा हर दिन नया रूप लेती जा रही थी। तेल के कारण मैक्सिकन लोगों पर कई युद्ध थोपे गए। अंततः कैल्स नामक एक व्यक्ति स्वतंत्रता और न्याय के विचारों के साथ उभरे और उन्होंने मैक्सिको की सत्ता पर नियंत्रण कर लिया। वो कृषि भूमि को किसानों में वितरित करना चाहते थे और तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करना उनका मकसद था। इस वर्ग के उदय के साथ ही अमेरिका और इंग्लैंड एक हो गए। उन्होंने कैल्स के पास एक दूत भेजा और वे धीरे धीरे उसे उसके क्रांतिकारी विचारों से दूर करने में सफल हो गए। कुछ ही समय में वो बड़े फार्मों और कई कारखानों का मालिक बन गया और अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। कैल्स अब क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन उसके आसपास के सभी लोग उसकी तरह नहीं बदले थे। मैक्सिको के रक्षा मंत्री जनरल कार्डेनास 1934 में देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने जनता और श्रमिकों के समर्थन के लिए कई कानून पारित किए और अंततः 1938 में उन्होंने मैक्सिकन तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये जानते हुए कि अमेरिका और ब्रिटेन मैक्सिकन तेल नहीं खरीदकर देश पर दबाव डाल रहे हैं, कार्डेनास ने राष्ट्रीय बॉन्ड जारी किए और लोगों से कहा कि इन शेयरों का प्रत्येक हिस्सा देशभक्ति का प्रमाण है। मैक्सिकन तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वो अब मैक्सिकन चांदी नहीं खरीदेगा, और चूंकि मैक्सिकन चांदी के 80% तक ग्राहक अमेरिकी थे, इसलिए मैक्सिकन अर्थव्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपने जो सुना ये ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। और भी पॉडकास्ट अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए iranradio.ir/hi।